सीता के लिए अपने प्राणों को दिए, हमसे भोजन नहीं मांगा कुछ, मैं उसका कोई भी प्रतिदान नहीं दे सका, इस जन्म में दूं, ऐसा सोच करके उनको मक्खन खिला रहे हैं। और काकभूषण जी उनके परम भक्त हैं, उनके परिवार को भी दे रहे हैं, अपने कभी कभी कुछ ले लेते हैं। और इतने में यशोदा मैया ने देखा हाथ में एक छोटा सा बेंत ले लिया और बड़ी बिल्ली की तरफ में चलती हुई इस घर में घुस गई कबाट के तले, और मौका देख रही कि इसको पकड़े आज, और वो इधर से इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम। यूं ही आगे बढ़ी और त्यों उसने देखा और त्यों ही वो कूद गया और भागा। पीछे से दरवाजा था, वो एकदम सदर दरवाजे पर उतरता था जो राजमार्ग, उस पर वो दौड़ने लगा। मैया ने कहा आज मुझे लज्जा करने की कोई बात नहीं, आज सब लोग गोष्ठ में चले गए हैं गैयों को चराने के लिए, अब समय है, मैं अभी सड़क पर भी दौड़ूंगी, कोई बात नहीं, आज तुझे जरूर पकड़ करके दंड दूंगी। इसलिए वो भी पीछा दौड़ने लगे। तपस्या से जिनका मन शांत निर्मल हो गया है, ऐसे बड़े बड़े योगी लोग मन के द्वारा भी जिनके चरण कमलों को पकड़ नहीं पाते, ध्यान में नहीं पकड़ पाते, आज ये गोपी अपने प्रेम से उनके पीछे पीछे दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए। हम लोग अपने मन को लगाते हैं, मन इधर उधर संसार में भटक जाता है, कभी इधर चिंता कभी उधर चिंता, मन एकाग्र नहीं होता। उस प्रभु को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। सनक सनंदन सनातन जैसे लोग, शंकर जैसे लोग भी तपस्या में भी अपने समाधि में भी जिनके चरणों को नहीं पकड़ पाते, दर्शन नहीं कर पाते, यशोदा मैया दौड़ी। कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? कृष्ण का भक्तों पर जो प्रेम है और भक्तों का जो कृष्ण का प्रेम है, यदि जिस भक्त का अधिक प्रेम है, कृष्ण जो भक्त हमें जो प्रेम कर रहे हैं उससे कृष्ण को अधिक वो यदि प्रेम करे तो वो पकड़ सकता है। दो चीज है, एक भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्त भगवान को प्रेम करते हैं। यदि भक्त का प्रेम अधिक हुआ तो पकड़ेगा, उनके वशीभूत हो जाएंगे, और नहीं तो लाखों जन्मों में उसे पकड़ नहीं सकते। यशोदा का वात्सल्य रस इतना अधिक है, ये कृष्ण को दौड़ करके पकड़ना चाह रहे हैं। अब पकड़ा, इतने में फिर इधर से इधर हो गए। उन्होंने हाथ में लठी आ रही थी, देखो ऐसे जब फेंकने के लिए किया तो उसने ऐसे किया, मैया मुझे मत मार, मैंने क्या किया, किसने मार रही, तू चोर है, मैं मैया मैंने क्या चोरी की, तुम घरों घरों में ये सब मक्खन चुराता है, नहीं मैया हमारे वंश में तो कोई चोरी नहीं है, यदि होगा तो तुम्हारे वंश में चोर होगा। यशोदा मैया के वंश में एक गोप का नाम चोर था, चोर गोप, इसलिए हमारे वंश में नहीं। अच्छा तो ये बतला तो तुमने मक्खन की हड़ियां को कैसे तोड़ा? मैंने तो तोड़ा नहीं, तो कैसे टूट गया? तो टूट गया यूं कि तुम्हारे पैरों में सोने के कड़ले बड़े मोटे मोटे भारी भारी हैं, और तुम दौड़ करके गई दूध की रक्षा करने के लिए, उसमें तुम्हारे पैर से उसमें लग गया, वो टूट गया, मैंने थोड़े तोड़ा। अच्छा तो वो हंसने लग गई करके फिर वो भागे, फिर इसी तरह से करते हुए उनको पीछे से जा करके पकड़ा। मैया दौड़ रही है, जब उनका स्थिर कुछ उम्र हो गई है, कुछ स्थूल शरीर है, कृष्ण भी बच्चा है, खूब दौड़ रहा है तेजी के साथ, पसीने से कुछ तरबर हो गई, केश में जो पुष्प थे वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, मानो पुष्प ये कह रहे हैं कि मैया तुम अकेले नहीं है, मैं भी हम लोग भी तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, आज इसको पकड़ना ही है। इसलिए साहस करके दौड़ करके उनको पीछे से पकड़ लिया। एक गोपी साधारण स्कूल कॉलेज में नहीं गई, संस्कृत पाठशाला में भी नहीं गई, प्रेम के लिए पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, और बिना प्रेम के ये संसार बेकार का है। गायें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाती, अपने बछड़ों को कितना प्यार करती हैं। किसी मैया को अपने बेटे को प्यार करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर डुप्लीसिटी, राजनीति और क्या क्या नीतियां पढ़ाई जाएंगी, और ये प्रेम इसीलिए दूर हो जाता है। पहले हमारे इस यहां गुरु लोगों के आश्रमों में पेड़ों के नीचे बिना पैसे के निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी, प्रेम भरा जाता था, प्रेम करना सीखो, पहले अपने परिवार से, माता पिता तुम्हारे गुरु हैं उनसे आरंभ करो, और इसके बाद में गुरु को, फिर गुरु से लेकर के भगवान को, भगवान में भी कृष्ण से पीछे। जब ये करेगा तो तुम्हारा प्रेम निर्मल होगा, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। आजकल की जैसे डुप्लीसिटी की, कैसे ये बम बनाओ, कैसे क्या करो, ऐसी बातें नहीं। इसलिए यशोदा जी का प्रेम वात्सल्य प्रेम ऐसा कि पीछे से उनको पकड़ लिया, थोड़ी देर के बाद में उनको पकड़ लिया तो रोने लग गए। रुदंतं मुहुर्नेत्र युगमं मृगंतं करंभोज युग्मेन सातं कनेत्रं मुहुर्स्वासंत त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रही वंदामो दरभक्तिबद्धं। अब वो कृष्ण रोने लगे, एक हाथ से यशोदा जी का हाथ पकड़ लिया कृष्ण का, और दूसरे हाथ से लठिया दे दी मारूं, और कृष्ण छिपक करके रोते हुए पीछे चले जाते और उनको फिर पकड़ करके लाती, मैया तुझे मुझे मत मार। उनको भी और भी सखियां थी, उन्होंने कहा जी इसे मारती क्यों आई, मारो मत। उन्होंने लठिया फेंक दी, आज तुम्हें बांध करके रखूंगी, किस लिए, अभी कुछ क्रोधित है, कुछ मन खराब है, छोड़ने से कहीं दूसरी जगह न चला जाए, इसलिए बांध करके रखना ही उचित है। इसलिए किसके साथ बांधूंगी, एक खल एक उदू खल, खल मैंने क्या, अपराधी, और उस अपराधी जिसकी सहायता लेकर के करता है वो दोनों ही दंडनीय हैं। एक आदमी ने किसी की हत्या की और एक आदमी ने उसको उसकाया कि इसे मारो, दोनों ही दंडनीय हैं। तो इसने चोरी की, ये खल, और जिसकी सहायता से जिस पर चढ़ करके चोरी की वो उदू खल। उदू खल मैंने क्या, अंग्रेजी में मर्द, क्या जने इधर में है कि नहीं, पहले भारतवर्ष में स्त्रियां इतने मोटे मोटे मुसल को लेकर के धमाधम एक दोनों हाथों से कूटती थी, अब तो स्त्रियां उसको पकड़ करके उठा ही नहीं सकती। पहले जाता भारतवर्ष में होता था, ब्लड प्रेशर नहीं आता था कभी, डॉक्टर के यहाँ इनकी दुकान में कोई जाता ही नहीं, यदि मुसल और इसका प्रयोग किया जाए, 80 लोड़ा का, कोई स्त्री को कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, स्थूल शरीर नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, एनर्जी रहेगी और सब तरह से ठीक रहेगा। तो उदूखल कहते हैं जिसमें कि चावल या धान या गेहूं उसमें कूटे जाते थे, इसके बाद में उसे रसोई बनाया जाता था, सब निर्मल किया जाता था। सूप होता था, उसे फटक करके बेकार की चीजें उड़ जाती थी, उसको रखा जाता था, परिश्रम होता था घर में। आजकल तो मशीन घर में लगा दिया है शायद, कपड़े भी अपने आप साफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है साबुन इत्यादि लगाने, धोने की भी जरूरत नहीं, मसालों के लिए एक रख लिया है कुछ सभी कुछ, तो ब्लड प्रेशर हो ना क्यों, बीमारी क्यों ना हो। और डॉक्टर लोग पाव बारह है उसमें, तो क्या बतला रहा था, वो दोखल में बने, एक खल, दोनों को दंड देना है। इसलिए अपने केस से बांधने वाली रेशम की डोरी निकाली, कृष्ण की कमर केवल अभी 12 अंगुल है और सोने का उसमें कर्धनी लगी हुई है। यशोदा मैया ने देखा जी पतली सी कमर, बस उसने निकाला, और ओखल में भी ऐसा ही होता है, ऊपर में चौड़ा और नीचे में चौड़ा जमीन पर रखने के लिए, और बीच में बहुत पतला होता है, तो दोनों को बांध देंगे आज, दो उसकी कमर और इसकी कमर निकाला, वो तो करीब करीब 3-4 हाथ लंबा, तीन चार हाथ माने हो गया कितना फुट? पाँच छः फुट उसे बांध लूं, किंतु वो दो अंगुल कम पड़ा। कृष्ण की कमर पूरी नहीं है तो ओखल में जाने की कोई बात ही नहीं, कृष्ण की कमर नहीं। बारह अंगुल भी दो अंगुल कम गया। दूसरी रस्सी मंगाई, उसको भी जोड़ दिया, वो भी पांच छह हाथ लंबी होगी और उसको भी जोड़ा, किंतु फिर भी लगता तो कृष्ण की कमर वही बारह अंगुल की बारह अंगुल रही, किंतु ये रस्सी बढ़ गई और हो गई दस पंद्रह हाथ, किंतु फिर भी दो अंगुल कम रही। ऐसा नहीं कि एक बार लपेट दिया फिर दूसरा लपेटा तो ऐसा नहीं, एक बार में निकला, ओखल तभी पड़ी हुई है बाहर में। इस प्रकार से अपने घर की जितनी भी रस्सियां थी वो सारी लगा दी, किंतु वो बारह अंगुल की उनकी कमर नहीं पूरी हुई, दो अंगुल कम रही। प्रत्येक बार कभी तीन अंगुल होना चाहिए, कभी एक अंगुल होना चाहिए, कभी थोड़ा सा होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं, बड़ी विचित्र बात, बस दो ही अंगुल कम रही। गोपियां ताली बजा करके हंस रही, इसके ब्रह्मा ने इसके ललाट में बंधन नहीं लिखा, ये यशोदा मैया बांधेगी, इसके ललाट में बंधन ही नहीं लिखा है, फिर ये कैसे बांधेगी। फिर भी यशोदा मैया कर रही है, वो हंस करके और वो जा रही हैं, ला रही हैं, अपने अपने घरों से रस्सियां भी लाने लगी और तमाशा भी आश्चर्यजनक देखने लगी। यशोदा मैया आश्चर्य की बात है, हमारे पेट से कोख से निकला और इसको मैं बांध नहीं पा रही हूं, इतनी रस्सियां लाई, लंबी होती गई, मीलों लंबी हो गई, मैं नहीं बांध सकी। आंखों में आंसू भर आए, छल छल आए। आज ये गोपियां हमारी सहेलियां क्या कहेंगी, हमें हंसेंगी ताली बजाएंगी, ये अपने बेटे को तो बांध नहीं सकी और उनके सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। कुछ दुखी भी हो गई, आंखें छल छल आई, उन्होंने अपने ठाकुर जी से जिसकी पूजा करती थी, प्रभो मैं अपने बेटे को मैं शासन नहीं कर सकती, पर वो बड़ी लज्जा होगी। जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया और कहीं कृष्ण ने देखा मैया पसीने से तरबत हो रही है, मुंह कभी विवर्ण हो रहा है, लाल पीला हो रहा है, बस झट परिश्रम से अपने ही आप वो बन गए। समाप्त सिन्न गाया विश्वस्त कबर सजत दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। कृष्ण को भगवान को कोई बांधने वाला आज तक जन्म नहीं दिया, जिसका आदि नहीं है अंत नहीं है, जिसका कोई इधर किनारा नहीं है जहां अंत नहीं है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कोई माप नहीं सकता, सारा विश्व ब्रह्मांड जिसकी पेट में है, जिसका बाहर भीतर ही नहीं है, अणोर अपि अणियान महतो अपमहियान, जो जीव है एक डॉट छोटा है उसको कौन बांध सकता है, और जो अखिल समस्त प्राणियों से भी बड़ा है उसको कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है, इसलिए बांध नहीं सकी, किंतु प्रेम से बांधा जा सकता है। यहीं पर भगवान की भगवत्ता दिखाई गई। ये जो दो अंगुल कम नहीं रही थी ये क्या चीज है, पहले इसको समझना चाहिए। लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो संसार की रियलिटी को समझने की चेष्टा करता है, ये क्या चीज है, कहां से आया, कैसे हुआ, समुद्र में तरंगे क्यों उठती हैं, इसका कारण क्या है। अजय चंद्र में आकर्षण है इसलिए पानी को खींचता है तो उसमें तरंगे उठती हैं, तो चंद्र में ये शक्ति कहां से आई, आई कहां से आकर्षण। सब पत्थरों में चुंबक नहीं होता, चुंबक एक होता है ना जो कि लोहे को खींच लेता है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, इस क्यों का उत्तर पाना बड़ा भारी कठिन है। कुछ न कुछ सब जगह ऐसी चीजें हैं जिनको मन के द्वारा जिसको जाना नहीं जा सकता है, किसी स्थूल ज्ञान के द्वारा आजकल के आधुनिक विज्ञान के द्वारा इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। गाय में इतना बात्सल्य प्रेम कहां से आया, बिना सीखे हुए ये सब चीजें नहीं। आग में जलाने की शक्ति कहां से आई, किसी चीज में विष होता है सांप के अंदर, क्यों होता है? विष से आदमी क्यों मरता है? यह क्यों का उत्तर देना बड़ा भारी कठिन है, विज्ञान भी नहीं समझ सकता। हाँ, एक स्थिति है जिस पर वो पहुंचने पर समझ सकता है, आत्मज्ञान हो न? इसलिए इस चीज को समझने के लिए कह रहे हैं कि लाखों कोटि मनुष्यों में से कोई एक आदमी ये जानना चाहता था, जानना चाहता है, हम कहां से हैं, हम हैं क्या? यदि शरीर मैं हूं तो ये मरने के बाद में शरीर तो रहता नहीं है, फिर वो आत्मा कहां चली जाती है? अच्छा, हम सुख के लिए चेष्टा करते हैं किंतु दुखी होता है क्यों? हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं किंतु बुढ़ापा आ जाती है। हम रोग नहीं चाहते हैं फिर भी रोग आ जाता है, क्यों? हम मरना नहीं चाहते हैं फिर भी मरते हैं, क्यों ऐसा होता है? ये सोचेगा, जिसके अंदर में ये सोचने की ताकत नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? पशु है। पशु में भी साधारण पशु नहीं, बुद्धिहीन बेवकूफ को गधा कहा जाता है, गधा कहीं का गधा, तो जानवरों में सबसे गधा। वैसे जो ये सब चीजों को चिंता है, ऐसे कोटि कोटि लोगों में से इसके लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे प्रयत्न करने वालों में भी सब लोग सफल नहीं हो पाते। तब वो किसी साधु का, जो कि भगवान का साक्षात्कार किया हुआ हो, उनकी शरण में जाता है, जैसे अर्जुन कृष्ण की शरण में गए, जैसे व्यास जी नारद जी के शरण में गए, सुखदेव जी व्यास जी के शरण में गए, परीक्षित महाराज सुखदेव के शरण में गए मरते समय में। ये क्या पहेली है, मेरी समझ में नहीं आती। तो बुद्धिमान मनुष्य ये सोचेगा, हम इतना परिश्रम करते हैं कुछ लेकर के तो जाना नहीं है, तो इतना परिश्रम क्यों कर रहे, क्यों कर रहे, आखिर क्या होगा, कहां जाना है? ऐसे कोटि कोटि मनुष्य की कोटेश्वरी महामुनि, कोई कोटि कोटि में से एक आदमी प्रयत्न करता है। अच्छा, प्रयत्न करने में भी प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक प्रयत्न होता है जो वास्तविक प्रयत्न होता है और दूसरा नकली। हम लोग नकली में अधिक तरह लग जाते हैं, असल जो प्रयत्न करना है उसमें लग नहीं पाते। असल प्रयत्न है शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, ददामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयान्ति ते। यदि शरणागत कोई हो जाता है अपनी बुद्धि बल विद्या शरीर का बल छोड़ करके, हे प्रभो मैं जैसा हूं मैं तुम्हारा हूं, तो उसके हृदय में बुद्धि दे देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्राप्त करने वाले लोगों में से करोड़ों में से नारायण की सेवा करने वाले मिलेंगे, इनका नारायण के भक्तों में से कोटि कोटि में से कोई एक राम का भक्त मिलेगा। कोटि कोटि राम भक्त के जो हैं कोटि कोटि, उनमें से कोई एक बिरला द्वारकाधीश कृष्ण का भक्त होगा। ऐसे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों द्वारकाधीश के भक्तों में से कोई एक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भक्त होगा। ऐसे करोड़ों करोड़ों में से कोई एक सखर से भगवान के कंधे पर चढ़ करके उनको अपना जूठा खिलाते हुए अपने खास के, ऐसे सखा लोग जो है बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसे सखाओं में से करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला ही जसोदा जैसा बात्सल्य होगा। मुख में भी विश्वमान्य दिखलाने पर भी जिनका प्रेम का प्रवाह रुक नहीं पाया, कृष्ण उनके सामने हार जाते हैं, कृष्ण उनके सामने रोते हैं, उनके चरणों में बलैया लेते हैं, गोदी में उतरने के लिए ललकते हैं जसोदा जी के। नारद जी एक दिन आए नंद भवन में, देखा कृष्ण जमीन पर लोट वोट पड़ रहा है, ऊँ कर रहा है, और जसोदा मैया कह रही है ऐसे, खबरदार तुमको अब गोदी नहीं लेंगे, दूध नहीं पिलाऊंगी, और वो मचल करके रो रहे हैं, मैया मैया मैया। नारद जी ने कहा जी जिनको हम ध्यान में नहीं दर्शन कर पाते हैं, आज दर्शन करने आए ये देख रहे हैं जमीन में लोट पोट रहा है वो पर ब्रह्मा, और ये जसोदा मैया ऐसे कर रही है, कैसी ये मैया है। नंद की माँ को ब्रह्मन से ओ महोदयम जसोदा च महाभागा बहुत कितना हो गया, नौ हो गया, अच्छा अब समाप्त कर रहा हूं। यशोदा जी ने, यशोदा जी का प्रयत्न, प्रयत्न से भगवान को नहीं माना जाएगा। उसके साथ में एक और चीज है, भगवान की कृपा चाहिए। हमारे प्रयत्नों को देख करके कृष्ण का चित्त प्रेम से द्रवित हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी, तो कृपा और हमारी हमारा प्रयत्न प्रयास दोनों जब मिलेगा तो वो बंधन में आएंगे। यशोदा जी सवेरे से प्रयत्न कर रही हैं, कृष्ण ने देखा ये दोपहर हो गया, मैया ने खाया नहीं, ये गिर रहे हैं, वो थक गई हैं, बस देखते ही पसीने देखते ही मुख देखा जैसे कभी पीला और लाल हो रहा है, बस उनकी कृपा से द्रवित हो गई। और साथ ही साथ में एक ही रस्सी, उसी से उसको भी बांधा और उस दुखल के साथ में बांध दिया। ये दो अंगुल है, अपने प्रयास से भगवान को नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा सब पर है, और अपना प्रयास नहीं होगा तो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अपना भक्ति का प्रयास होगा उस पर भगवान की कृपा होगी, दोनों मिलकर के सब बंधेंगे। जैसे एक बंदर है अपनी मैया को पकड़ लेता है, मैया नहीं पकड़ती, और एक बिल्ली होती है अपने बच्चे को पकड़ लेती है। हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब जानते हैं, मैं शरणागत हो गया, कुछ करने का नहीं है, जब उनकी कृपा होगी तब हमको वो मिल जाएंगे, इसलिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी को भगवान नहीं मिलेंगे। और बंदर का बच्चा है, क्या करता है, अपनी मैया को पकड़ लेता है, इधर से उधर चला जाता है, छलांग लगाती है मैया, किंतु गिरता नहीं। यदि गिर गया उस बच्चे को अब कभी उसकी मैया नहीं छुएगी, छोड़ देगी सदा के लिए। बंदरों में भी ऐसा देखा जाता है। इसलिए इन दोनों प्रयासों से नहीं होगा, बंदर के बच्चे जैसा प्रयास और उसकी मैया कृपा करेगी, भगवान की कृपा होगी, हमारे प्रयत्न को देख करके इतना परिश्रम। ध्रुव ने अभी 6 महीने हो गए कुछ खाया नहीं और हमारे लिए लगा हुआ, इसने हमारे लिए अपनी पत्नी पुत्र भाई बंधु संसार सबको छोड़ दिया, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए ये दोनों चीज होनी चाहिए, हमारा भक्ति का प्रयास और कृष्ण की कृपा, दोनों मिलकर के भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। इस ये भक्ति का विचार है। और भी बहुत सी बातें हैं किंतु इसके बाद की बहुत सुंदर मधुर लीला है, अब तो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सा वर्णन कर दो तुम ये किस प्रकार से इसके बाद में क्या हुआ। यशोदानी ने उनको बांध दिया उखल के साथ में और कहा जैसे मैं अभी आ रही हूं बच्चों, उनके इतने में सखा लोग आ गए, दाम सिदाम सुबल मधुमंगल तो कृष्ण अलमंग मधुमंगल सब आ गए, देख रहे कृष्ण कि मैया तो अब चली गई है आकर के, और ताली बजाने लगे, हंसने लगे, और कृष्ण भी अब हंसने लगा, काजल समेत पानी का यहां से सूख गया है, अब रो नहीं रहे हैं, हंस रहे उनके साथ। सब लोगों ने खोलने की चेष्टा की, खोल नहीं सके, पहुंचे कृष्ण अपना हाथ इधर तक जाए नहीं, यशोदा मैया का बंधन ये सखा लोग भी नहीं, दास कोई नहीं खोल सका, खोलेगा कौन, वही मैया खोलेगी नहीं तो बाप खोलेगा। सब लोगों ने बोलो खोलेगा तो बोलो, थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़े शांत चित्त से आप लोगों ने श्रवण किया। मैं भारत जाऊंगा तो कहूंगा आज हमारे प्रवासी लोग मिले, हमारी कथाएं सुनी, आप लोग श्रवण किए, जहां जिस रूप में रहेंगे भगवान का नाम जरूर करेंगे। कलयुग में नाम ही सबसे प्रधान है, इसलिए कोई चीज की आवश्यकता बुद्धि विद्या बल की जरूरत नहीं, आपको जो भगवान का नाम प्रिय हो उसे करेंगे, तब गंदी चीजों से बचेंगे, हिंसा मांस खाना शराब पीना जुआ खेलना इनसे बचेंगे, विशेष करके माता पिता गुरुजनों का आदर करेंगे। बूढ़े हो जाने की वजह से या गरीब हो जाने की वजह से उनकी उपेक्षा खबरदार मत करेंगे, उनके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। इस तरह से अपनी भारतीय संस्कृति को जहां पर भी रहेंगे जिस रूप में रहेंगे भूलेंगे नहीं और नाम का आश्रय करके अपना चलते रहेंगे। अपने जीवन में भी परलोक के जीवन में भी आप लोग सुखी रहें। गौर प्रणाम। अभी आरती कर करके भागवत को प्रणाम करके तब फिर अपने अपने स्थानों में जाएंगे। अच्छा हुआ आपकी मैया आई है।
Thank you. Thank you. Thank you.